एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही दिलचस्प फ्रांसीसी दार्शनिक मॉरिस मर्लो पोंटी की दुनिया में उतर रहे हैं। उनका जीवन काल था 1908 से 1961, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोचने, महसूस करने और दुनिया को जानने में हमारे शरीर की भूमिका क्या है। क्या ये सिर्फ एक मशीन है या कुछ और?
हाँ बिल्कुल, और मर्लो पोंटी इसी सवाल के एकदम केंद्र में जाते हैं।
उन्हें अक्सर देहदारी दृष्टि का दार्शनिक कहा जाता है ना, फिलोसोफर ऑफ एम्बॉडेड परसेप्शन।
जी हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर उनका जो मूल विचार था वो बहुत क्रांतिकारी था। देखिए, सदियों से, खासकर डेकार्त के बाद से, मन और शरीर को बिल्कुल अलग माना जाता था।
हाँ, मन मतलब चेतना, विचार और शरीर बस एक भौतिक वस्तु।
बिल्कुल, मर्लो पोंटी ने इसी दीवार को तोड़ा। उन्होंने कहा कि शरीर दुनिया को जानने का सिर्फ एक औजार नहीं है, बल्कि दुनिया में हमारे होने का तरीका ही शारीरिक है, हमारा अस्तित्व ही देहधारी है।
और यही बात मुझे लगता है आज के डिजिटल युग में उनके विचारों को और भी ज्यादा अहम बना देती है।
सही कहा, जब हम ज्यादातर वक्त स्क्रीन के जरिए दुनिया से जुड़ते हैं तो शरीर की भूमिका पर उनका जोर हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, लेकिन उनके विचारों में और गहरे उतरने से पहले उस जमाने को थोड़ा समझ ले जिसमें वो जी रहे थे, सोच रहे थे।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। मर्लो पोंटी का जीवन यूरोप के इतिहास के शायद सबसे उथल पुथल वाले दौर से गुजरा।
मतलब
आप सोचिए, 2 विश्व युद्ध, भयानक आर्थिक मंदी, फासीवाद का डर, फिर शीत युद्ध शुरू हो गया, उपनिवेशवाद खत्म होने लगा था। ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं थी, इन्होंने इंसान के होने, उसकी आजादी, उसकी जिम्मेदारी पर बड़े गहरे सवाल खड़े किए, और मर्लो पोंटी का दर्शन इन्हीं सवालों से जूझता है।
और उस वक्त का बौद्धिक माहौल भी तो जबरदस्त था फ्रांस, खासकर पेरिस।
बिल्कुल, नए नए विचारों की जैसे बाढ़ आई हुई थी। घटना विज्ञान यानी फिनोमिनोलॉजी, अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सवाद, ये सब हवा में थे।
एडमंड हुसल और मार्टिन हाइडेगर का भी जिक्र आता है।
हाँ, इन जर्मन दार्शनिकों का असर बहुत गहरा था। मर्लो पोंटी ने उनसे बहुत कुछ लिया, पर अपनी एक अलग राह भी बनाई।
और उनके अपने साथी विचारक सार्त्र, सिमोन द बुवार।
अरे हाँ, जॉन पॉल सार्त्र, सिमोन द बुवार, एल्बर्ट कामू, इमैनुएल लेविनास, ये सब उसी दौर के थे। सार्त्र और बुवार के साथ तो उनका रिश्ता भी बड़ा दिलचस्प था। दोस्ती थी, बहसें थीं, कभी कभी थोड़ी प्रतिद्वंदिता भी।
तो ऐसे माहौल में मर्लो पोंटी का अपना सफर कैसे शुरू हुआ? उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए।
उनका जन्म 1908 में हुआ। फ्रांस के पश्चिमी तट पर एक शहर है रॉशफोर्ट स्यूरमेर, वहाँ। पिता नेवी में थे, लेकिन उनका देहांत जल्दी हो गया जब मर्लो पोंटी बहुत छोटे थे।
ओह।
तो माँ ने ही उन्हें पाला पोसा। वो बचपन से ही काफी होशियार थे।
और पढ़ाई? सुना है पेरिस के किसी बहुत बड़े कॉलेज से पढ़े थे।
जी हाँ, पेरिस का मशहूर इकोल नॉर्मैनिस सुपीरियर, ईएनएस जिसे कहते हैं, वहां उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी। और मजे की बात, वहीं उनकी मुलाकात जॉन पॉल सार्त्र से हुई।
अच्छा, तो वो कॉलेज के साथी थे।
हाँ, और वहीं से उनकी दोस्ती और वो लंबी बौद्धिक बहसें शुरू हुईं। ईएनएस उस समय फ्रांस के सबसे तेज दिमागों का गढ़ था।
उनके जीवन या सोच में कोई खास मोड़ आए जिन्होंने उनके दर्शन को दिशा दी हो?
हाँ, दो बातें बहुत अहम लगती हैं। एक तो एडमंड हुसल के घटना विज्ञान से उनका परिचय। हुसल कहते थे कि दर्शन को सीधे हमारे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ किताबी सिद्धांतों पर। ये बात मर्लो पोंटी को जम गई।
और दूसरी बात?
दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध का अनुभव। वो खुद सैनिक थे, तो युद्ध की वो जो क्रूरता थी, शरीर की जो कमजोरी है, चोट लगने का डर, इतिहास की ठोस सच्चाई, इन सब ने उन्हें समझाया कि इंसान का होना सिर्फ कोई दिमागी ख्याल नहीं है, ये बहुत ठोस, शारीरिक और ऐतिहासिक चीज है।
ये तो बहुत गहरा असर हुआ होगा। युद्ध के बाद फिर उनका एकेडमिक जीवन कैसा चला?
वो तेजी से आगे बढ़े, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और फिर 1952 में उन्हें कॉलेज द फ्रांस में फिलॉसफी का चेयरपर्सन चुना गया।
कॉलेज द फ्रांस, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है फ्रांस में।
हाँ, सर्वोच्च अकेडमिक सम्मानों में से एक, और वो इसे पाने वाले सबसे कम उम्र के दार्शनिक थे उस वक्त। इससे उनकी बौद्धिक प्रतिष्ठा का पता चलता है।
लेकिन आपने सार्थ का जिक्र किया था, उनकी दोस्ती का क्या हुआ? सुना है बाद में कुछ मतभेद हो गए थे।
हाँ, 1950 के दशक में, राजनीतिक विचारों को लेकर। खासतौर पर सोवियत संघ पर क्या रुक हो और एक बुद्धिजीवी की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए इन सवालों पर।
अच्छा,
उनके बीच इतने गंभीर मतभेद हुए कि मालो पोंटी ने ले टॉम्स मॉडर्न नाम की पत्रिका जो उन्होंने सार्त्र के साथ मिलकर शुरू की थी उसके एडिटोरियल बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ये उस वक्त का एक बड़ा बौद्धिक ब्रेकअप माना जाता है।
ओहो, और फिर उनका अंत भी काफी अचानक हुआ शायद।
हाँ, बहुत दुखद। 1961 में सिर्फ 53 साल के थे वो, अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। वो उस समय अपने काम के शिखर पर थे, एक बहुत जरूरी किताब पर काम कर रहे थे जो अधूरी रह गई।
सिर्फ 53 साल?
हाँ, और कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मेज पर देकार्त की एक किताब खुली पड़ी थी।
देकार्त की? वही देकार्त जिनके मन शरीर के द्वैतवाद से वो जीवन भर एक तरह से संवाद करते रहे।
बिल्कुल, ये काफी मार्मिक बात है ना?
हाँ वाकई। चलिए अब उनके मुख्य विचारों और उनकी किताबों पर आते हैं। उनकी पहली बड़ी किताब थी द स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर, 1942 में आई।
जी, ये उनकी डॉक्टरेट थीसिस पर आधारित थी। इसमें उन्होंने उस वक्त जो व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म बहुत हावी था उसे चुनौती दी।
व्यवहारवाद मतलब वो जो कहता है कि जीव का व्यवहार बस बाहरी उत्तेजनाओं का नतीजा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स।
हाँ बिल्कुल, एक तरह की मशीन की तरह। मार्लो पोंटी ने कहा, नहीं ये इतना सरल नहीं है। उन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और बायोलॉजी से उदाहरण लेकर तर्क दिया कि व्यवहार एक ज्यादा जटिल सार्थक चीज है। ये जीव और उसके पर्यावरण के बीच एक सक्रिय, एक तरह से कहें तो संरचित रिश्ता है। ये सिर्फ बाहरी दबावों का नतीजा नहीं है। उन्होंने चेतना और प्रकृति के रिश्ते को नए ढंग से देखा।
लेकिन उनकी जो सबसे मशहूर और शायद सबसे प्रभावशाली किताब है वो तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन है जो 1945 में आई। कहते हैं ऐसे समझे बिना मार्लो पोंटी को समझना मुश्किल है।
बिल्कुल सही, ये उनकी मास्टरपीस है। इसी में उन्होंने अपने दो सबसे बुनियादी विचार सामने रखे। पहला, धारणा की प्रधानता, यानी प्राइमेसी ऑफ परसेप्शन।
धारणा की प्रधानता, इसका क्या मतलब हुआ?
अरे, इंद्रियों से बनता है, देखने सुनने छूने से। दिमागी सोच या तर्क वितर्क से नहीं, हम सोचने से पहले महसूस करते हैं, हमारी धारणा सबसे पहले आती है।
अच्छा, और दूसरा विचार? देह विषय, बॉडी सब्जेक्ट, ये क्या है?
ये शायद उनका सबसे क्रांतिकारी विचार है। देखिए, सदियों से शरीर को कैसे देखा गया, एक वस्तु की तरह,
ऑब्जेक्ट,
जिसे हमारा मन या आत्मा इस्तेमाल करती है।
हाँ, जैसे कोई टूल हो।
बिल्कुल, मार्लो पोंटी ने कहा, नहीं, हमारा शरीर कोई वस्तु नहीं है जिसे हम रखते हैं जैसे हम कोई कार या पेन रखते हैं, बल्कि हम अपना शरीर है। हमारा शरीर ही दुनिया में हमारे होने का माध्यम है, हमारी चेतना का आधार है। शरीर सिर्फ कर्म ऑब्जेक्ट नहीं, कर्ता सब्जेक्ट भी है, इसीलिए देह विषय।
वाह, मतलब जहां अनुभव करने वाला और अनुभव की जाने वाली दुनिया एक हो जाते हैं।
हाँ, एक तरह से शरीर वो जगह है जहां ये विभाजन धुंधला हो जाता है।
तो फिर तो हमारा सोचना, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान, सब कुछ हमारे इस शारीरिक होने से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, मार्लो पोंटी के लिए हमारा चलना फिरना, चीजों को छूना, दुनिया में अपनी जगह बनाना, ये सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, ये हमारे ज्ञान की, हमारे अर्थ बनाने की बुनियाद है। उनका एक मशहूर कहना है कि सोचने से पहले एक मैं कर सकता हूँ।
आई कैन।
हाँ, मतलब शरीर की जो क्षमता है चल सकने की, देख सकने की, छू सकने की, वही विचार की संभावना पैदा करती है। शरीर एक्शन लेता है और उसी से समझ बनती है।
ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, इन्होंने राजनीतिक विषयों पर भी लिखा था, जैसे ह्यूमनिज्म एंड टेरर, 1947। ये किताब काफी विवादों में रही थी शायद।
हाँ, रही थी। इसमें उन्होंने मार्क्सवाद के संदर्भ में राजनीतिक हिंसा और क्रांति की नैतिकता जैसे बहुत मुश्किल सवालों से जूझने की कोशिश की थी। मतलब क्या अच्छे लक्ष्यों के लिए हिंसा कभी जायज हो सकती है? उनका विश्लेषण काफी सूक्ष्म था, पर उसकी आलोचना भी हुई।
किस तरह की आलोचना?
कुछ लोगों को लगा कि वो शायद सोवियत संघ में जो राजनीतिक मुकदमे चल रहे थे, मॉस्को ट्रायल्स, उनको कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने खुद अपने उस नजरिए से थोड़ी दूरी बना ली थी, पर ये किताब आज भी पॉलिटिकल एथिक्स की बहस में प्रासंगिक है।
और उनकी वो आखिरी किताब जो अधूरी रह गई, द विजिबल एंड द इनविजिबल, 1964।
हाँ, वो उनके निधन के बाद छपी। ये किताब उनके विचारों के एक और भी गहरे, शायद ज्यादा रहस्यमयी दौर की तरफ इशारा करती है। इसी में उन्होंने मांस यानी फ्लैश, या फ्रेंच में लाशेर की वो थोड़ी मुश्किल सी अवधारणा पेश की।
मांस, ये क्या है? ये तो सुनने में अजीब लगता है।
हाँ, ये शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये न तो सिर्फ हमारा भौतिक शरीर है, न सिर्फ चेतना है। मर्लो पोंटी इसे एक तत्व की तरह बताते हैं, जैसे हवा या पानी होते हैं।
एक तत्व? कैसे?
ये उस गहरे बुनियादी जुड़ाव को दिखाता है जहां महसूस करने वाला शरीर और महसूस की जाने वाली दुनिया एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, जहां देखने वाला खुद देखे जाने वाले का हिस्सा है।
कोई उदाहरण?
सोचिए, जब आप अपनी एक हथेली से दूसरी को छूते हैं, कौन सा हाथ महसूस कर रहा है और कौन सा महसूस किया जा रहा है?
दोनों ही कर रहे हैं एक तरह से।
बिल्कुल, एक हाथ छू रहा है कर्ता, दूसरा छुआ जा रहा है कर्म, पर पहला हाथ ये भी महसूस कर रहा है कि वो छू रहा है और दूसरा हाथ भी महसूस कर रहा है कि उसे छुआ जा रहा है। कर्ता और कर्म की भूमिकाएं पलट जाती हैं, खुल मिल जाती हैं। मांस इसी तरह के इंटरट्वाइनिंग या अंतर्गुम्फन का नाम है। ये विषय और वस्ति के पारंपरिक भेद से आगे की बात है।
ये तो काफी गहरा और काव्यात्मक विचार है। तो अगर हम उनके पूरे दार्शनिक योगदान को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं?
देखिए, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था दर्शन को किताबी दुनिया से निकालकर हमारी जीती जागती रोजमर्रा की दुनिया में वापस लाना। उनके जो केंद्रीय विचार हैं वो है धारणा की प्रधानता, महसूस करना पहले आता है, देह विषय, हमारा शरीर ही हमारा अस्तित्व है, और मानव अनुभव की मौलिक अस्पष्टता। दुनिया कभी पूरी तरह साफ नहीं होती, उसमें हमेशा एक गहराई, एक रहस्य बना रहता है। संक्षिप्त में कहें तो हमारा ये जो शारीरिक महसूस करने वाला अस्तित्व है, यही हर तरह के अर्थ, भाषा और ज्ञान की जड़ है।
चलिए, अब जरा उनकी तुलना कुछ और बड़े दार्शनिकों से करते हैं। डेकार्त का तो आपने बताया ही, जिन कथा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मर्लो पोंटी ने कहा मैं कर सकता हूँ।
हाँ, डेकार्त के लिए शरीर एक मशीन था, आत्मा उसे चलाती थी। मर्लो पोंटी के लिए शरीर ही आत्मा का, चेतना का प्रकट रूप था। ये बिल्कुल उलट नजरिया था।
और उनके अपने जमाने के साथी सार्त्र, जिनकी आजादी की अवधारणा बहुत मशहूर है, रेडिकल फ्रीडम।
सार्त्र ने चेतना को लगभग असीमित आजादी दी, एक ऐसी चेतना जो किसी भी हालत से बंधी नहीं है, जो हमेशा चुनने के लिए आजाद है।
हाँ,
मर्लो पोंटी को ये आजादी थोड़ी अवास्तविक लगी, जैसे ये बिना शरीर के हो। उनके लिए आजादी हमेशा स्थित होती है, सिचुएटेड।
मतलब वो हमारे शरीर, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी दुनिया की सीमाओं के अंदर ही मुमकिन है।
अच्छा, मतलब आजादी हवा में नहीं होती?
बिल्कुल नहीं।
ये कोई शून्य में लिया गया फैसला नहीं है, ये अपनी परिस्थितियों के साथ लगातार बातचीत करना, तालमेल बिठाना है। मर्लो पोंटी की आजादी ज्यादा जमीनी लगती है, ज्यादा मानवीय।
और हाइडेगर, जिन्होंने दुनिया में होना, बीइंग इन द वर्ल्ड की बात की थी।
हाँ, हाइडेगर का ये विचार मर्लो पोंटी के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन जहाँ हाइडेगर की बातें अक्सर काफी अमूर्त, फिलोसॉफिकल लेवल पर रहती हैं, वहीं मर्लो पोंटी ने दुनिया में होने को ठोस शारीरिक अनुभवों से समझाया।
कैसे?
उन्होंने दिखाया कि दुनिया में होना कैसा महसूस होता है, जब हम चलते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम छूते हैं। एक तरह से उन्होंने हाइडेगर के विचार को शरीर दे दिया, उसे साकार कर दिया।
ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने स्थापित विचारों को लेकर अपनी एक अलग राह बनाई। अच्छा, उनके काम का असर कहाँ कहाँ पड़ा? क्या ये सिर्फ दर्शन तक ही रहा?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका प्रभाव बहुत दूर तक गया है। जैसे मनोविज्ञान में सन्निहित अनुभूति या एम्बॉडीड कॉग्निशन का जो पूरा फील्ड है।
एम्बॉडीड कॉग्निशन?
हाँ, ये विचार की हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया सिर्फ दिमाग में नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर और पर्यावरण के साथ उसकी बातचीत पर निर्भर करती है। ये सीधे मर्लो पोंटी से प्रेरित है। गेस्टाल्ट थेरेपी पर भी उनका असर है।
और कॉग्निटिव साइंस, यानी संज्ञानात्मक विज्ञान?
जी हाँ, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में भी ये बात मानी जा रही है कि असली इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ डेटा काफी नहीं है, एक शरीर चाहिए जो दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर सके। ये तो सीधे सीधे मर्लो पोंटी के विचारों की पुष्टि है।
कमाल है, आपने शुरू में कला का भी जिक्र किया था।
हाँ, मर्लो पोंटी खुद भी युवा अवस्था में पेंटिंग करते थे, और चित्रकार पॉल सेजान पर लिखा उनका निबंध तो क्लासिक माना जाता है।
सेजान पर क्यों?
उन्होंने दिखाया कि कैसे सेजान की पेंटिंग्स दुनिया को देखने के हमारे शारीरिक अनुभव को उस अस्पष्टता को पकड़ती हैं जिसकी बात मर्लो-पोंटी करते हैं। इसी तरह आर्किटेक्चर में भी उनके विचारों का असर है कि इमारतों और जगहों का जिया गया अनुभव कैसा होता है।
और समाज विज्ञान में?
समाजशास्त्र में पियरे बोर्ड्यू जैसे बूढ़े विचारक ने अपनी हैबिटस की अवधारणा मर्लो-पोंटी से ही ली थी। फिर फेमिनिस्ट थियरी यानी नारीवादी सिद्धांत में भी उनके काम की गूंज है।
फेमिनिस्ट थियरी में कैसे?
जूडिथ बटलर, आइरिस मेरेन यंग जैसे कई विचारकों ने जिए गए शरीर लिव्ड बॉडी की उनकी समझ का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया है कि कैसे जेंडर और समाज हमारे शारीरिक अनुभवों को बनाते हैं। और हाँ, मेडिकल ह्यूमैनिटीज और डिसेबिलिटी स्टडीज में भी बीमारी, दर्द, उम्र या शारीरिक भिन्नताओं को समझने में उनके विचार बहुत काम आए हैं।
ये तो वाकई बहुत बड़ा दायरा है। उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं शायद जो उनके विचारों को समझने में मदद करते हैं, जैसे शरीर दुनिया को धारण करने का हमारा सामान्य माध्यम है।
हाँ, ये बिल्कुल उनके मूल विचार का सार है। शरीर कोई बाधा नहीं है बल्कि दुनिया से जुड़ने का हमारा तरीका है, हमारा माध्यम है।
एक और है, हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में एक दुनिया को महसूस करते हैं, हमें इसके बजाय कहना चाहिए दुनिया वह है जिसे हम महसूस करते हैं।
ये सीधा देकार जैसे दार्शनिकों के शक पर हमला है। मर्लो-पोंटी कह रहे हैं कि दुनिया की सच्चाई पर शक करने की जरूरत क्या है, हम तो पहले से ही उसमें हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। हमारी धारणा ही हमारी पहली हकीकत है। शक करना तो बाद की दिमागी कसरत है। और ये वाला, क्योंकि हम दुनिया में हैं, हम अर्थ के लिए अभिशप्त हैं। अभिशप्त मतलब doomed to meaning। इसका मतलब है कि एक महसूस करने वाले प्राणी के तौर पर हम दुनिया को कभी बेमानी पा ही नहीं सकते। हमारा होना ही ऐसा है कि हम लगातार चीजों में मतलब ढूंढते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उन्हें अर्थ देते हैं। दुनिया हमें हमेशा एक सार्थक नज़ारे की तरह ही मिलती है, चाहे वो धुंधली ही क्यों ना हो। अर्थ से बच निकलना मुमकिन नहीं।
सच्चा दर्शन दुनिया को फिर से देखना सीखना है, ये भी उनका ही है।
जी, उनके लिए दर्शन का काम सिर्फ नए नए सिद्धांत बनाना नहीं, बल्कि हमें उस बुनियादी अनुभव की तरफ वापस ले जाना है जिसे हम रोज़मर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। दुनिया को ताजगी से देखना, जैसे पहली बार देख रहे हों, यही असली फिलॉसफी है।
जाहिर है, इतने मौलिक विचार के तो आलोचनाएं भी हुई होंगी।
बिल्कुल, एक मुख्य आलोचना ये रही है कि उन्होंने शरीर और व्यक्तिगत अनुभव पर इतना जोर दिया कि शायद भाषा, संस्कृति और समाज की भूमिका को कम आका। फूको जैसे बाद के विचारकों ने कहा कि वो व्यक्ति की चेतना पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन सामाजिक ताकतों पर कम जो हमारे अनुभवों को बनाती हैं।
अच्छा, और उनकी राजनीतिक किताब ह्यूमैनिज्म एंड टेरर की आलोचना का तो हमने जिक्र किया ही, उनकी लिखने की शैली के बारे में भी कुछ कहा जाता है?
हाँ, उनकी स्टाइल काफी घनी है, काव्यात्मक है, रूपकों से भरी हुई। तो जो लोग दर्शन में बिल्कुल सीधी, सपाट, तार्किक भाषा पसंद करते हैं, उन्हें मर्लो-पोंटी को पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। उन पर कभी कभी अस्पष्ट होने का आरोप भी लगा है। पर उनके समर्थक कहते हैं कि उनकी भाषा उनके विषय के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंदगी का अनुभव हमेशा गणित की तरह साफ सुथरा नहीं होता।
सही बात है, नारीवादी नजरिए से भी कुछ सवाल उठे थे शायद।
हाँ, कुछ फेमिनिस्ट आलोचकों को लगता है कि लैंगिक अंतर पर उनके कुछ विचार शायद थोड़े पुराने या एसेंशियलिस्ट हैं। मतलब वो मर्द और औरत के अनुभवों को उनकी बायोलॉजिकल नेचर से ज्यादा जोड़ देते हैं। पर जैसा हमने पहले कहा, बहुत से दूसरे फेमिनिस्ट विचारक उनके जिए गए शरीर वाले आइडिया को जेंडर को समझने के लिए बहुत जरूरी मानते हैं।
चलिए, जाते जाते कुछ मजेदार बातें भी जान लेते हैं उनके बारे में। सुना है वो खुद शारीरिक रूप से उतने कुशल नहीं थे।
हाँ, ये एक मजेदार विरोधाभास है। जो फिलोसोफर शरीर पे इतना जोर दे रहा हो, कहते हैं वो खुद थोड़े अनाड़ी थे, क्लम्जी, खासकर सोशल सिचुएशंस में। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो टीचर बहुत अच्छे थे, मुश्किल आइडियाज को बड़े साफ और दिलचस्प तरीके से समझाते थे, रोजमर्रा की जिंदगी, साइकोलॉजी, आर्ट से उदाहरण देकर।
और ये भी कि वो स्वभाव से काफी विनम्र थे, सार्थ के उस मुखर व्यक्तित्व से अलग।
बिल्कुल, इतने बड़े बुद्धिजीवी होने के बावजूद उनमें एक तरह की सौम्यता थी, शालीनता थी।
तो अब हम अपनी इस चर्चा के अंत की ओर आ गए हैं। आज के हमारे श्रोताओं के लिए मर्लो-पोंटी के विचारों से जुड़ा सोचने के लिए मुख्य बिंदु क्या हो सकता है?
मेरे ख्याल से आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये जो डिजिटल और वर्चुअल दुनिया बढ़ती जा रही है, जहां हम स्क्रीन के सामने इतना वक्त बिताते हैं, वहां मर्लो पोंटी का देहधारी उपस्थिति, एम्बॉडीड प्रेजेंस पर जोर हमें क्या सिखाता है? क्या टेक्नोलॉजी हमें अपने शरीर से और शरीर के जरिए दुनिया को महसूस करने के अपने उस बुनियादी तरीके से कहीं दूर ले जा रही है, या फिर ये हमें शरीर की अहमियत को नए सिरे से समझने का मौका दे रही है? हमारा अपने शरीर के साथ, इस भौतिक दुनिया के साथ रिश्ता कैसे बदल रहा है और इसके मायने क्या है हमारे लिए, इस पर सोचना आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। मॉरिस मर्लो पोंटी के विचारों की इस बेहतरीन यात्रा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।